सभी उपस्थित भक्तों से अनुरोध है, कृपया मोबाइल फोन बंद कर दीजिए।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radha Gokula Nanda Radhe, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupad, Prabhupad, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरंग की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। एक बार श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में बैठे बैठे सोच रहे थे। सारे भौतिक जगत के बद्ध जीवों के बारे में जो कि जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं और अनेक पीड़ाएं सहन करते आए हैं अनेक जन्मों से, और वो सोच रहे थे कि इनका उद्धार कैसे किया जाए। और केवल उद्धार ही नहीं, उनको कोई ऐसे विशेष भेंट कैसे प्रदान किया जाए जो कि मेरे अन्य अवतार भी नहीं दे पाते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण, जैसे कि आप सब जानते हैं, समय समय पर अवतार लेते हैं, जैसा कि वो भगवद गीता में स्वयं घोषणा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनंत अवतार हैं और इनमें से हर एक अवतार समय समय पर प्रकट होके बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए वो प्रकट होते हैं। उनके अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग योनियों में प्रकट होते हैं, कभी कभी मनुष्य समाज में भी प्रकट होते हैं। परंतु साधारणतः ये जितने भी अवतार हैं अवश्य बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं, अवश्य भक्तों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, श्रद्धालु लोगों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाकर वैकुंठ जगत में भी ले जाते हैं। परंतु इस बार श्री कृष्ण सोच रहे थे कि कैसे मेरे अन्य अवतारों से भी भिन्न एक और इससे भी श्रेष्ठ भेंट दिया जाए भौतिक जगत के लोगों के लिए, खास करके बेलगाम के लोगों के लिए। गोलोक वृंदावन में बैठे बैठे उन्होंने बेलगाम के बारे में खास विचार किया होगा, ऐसे हमें लगता है। और फिर सोचने लगे कि मुझे ही अवतीर्ण होना होगा। वैसे तो भगवान के अवतार भी भगवान ही हैं, परंतु उनके विस्तार होते हैं, भगवान अपने आप को अनंत अवतारों में विस्तार करते हैं। कभी श्री रामचंद्र, तो कभी श्री नरसिंह देव, कभी श्री वामन देव इत्यादि। और भगवान के जितने भी अवतार हैं, अनंत अवतार, इनका शाश्वत अस्तित्व भगवान के वैकुंठ जगत में होता है। श्री कृष्ण स्वयं गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। तो अब श्री कृष्ण गोलोक में बैठे बैठे सोच रहे थे कि मेरे विस्तारों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब मैं स्वयं प्रकट होना चाहता हूं लोगों को ये विशेष भेंट देने के लिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के जितने भी अन्य अवतार हैं, रूप हैं, जैसे इनके नारायण रूप हैं, पुरुष अवतार हैं, तो ये सारे के सारे भागवत में कहा गया है ये अवश्य भगवान हैं, परंतु भगवान के अंश हैं, उनके विस्तार हैं, या उनके अंशों के अंश हैं, परंतु श्री कृष्ण ये स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान और भगवान में अंतर क्या है? वैसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। जैसे कि घर में रहने वाले व्यक्ति में और उसी व्यक्ति के सड़क पर रहने वाले व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी अंतर होता है, वेश पोशाक बर्ताव अलग होता है। तो श्री कृष्ण वही हैं जो अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, अलग अलग कारणों को, उद्देश्यों को संपन्न करने के लिए प्रकट होते हैं। परंतु अब वही श्री कृष्ण जो गोलोक वृंदावन के हैं, अब सोच रहे हैं कि मुझे जैसे है वैसे प्रकट होना चाहिए। हाँ, मैं अभी अभी वृंदावन में तो प्रकट हुआ था, परंतु जिस प्रेम का प्रदर्शन मैंने वृंदावन में किया था, जिस प्रेम का आस्वादन मैं गोलोक में बैठ के करता हूं, और जिसका आस्वादन मैंने धरातल के ऊपर वृंदावन में किया था, उसी प्रेम को मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं। केवल मुझे आस्वादन करके क्या होगा, मैं ये सबको बांटना चाहता हूं। इसलिए मैं अब एक विशेष रूप में प्रकट हो जाऊंगा जो स्वयं भगवान का ही रूप होगा, अर्थात ये विस्तार नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण वृंदावन के। अब सोच रहे हैं कि मैं एक ऐसे अद्भुत विचित्र अपूर्व रूप में प्रकट हो जाऊंगा कि सभी लोग प्रभावित होकर उस उच्च कोटि के वृंदावन के भक्ति को प्राप्त करेंगे जो पहले मैंने नहीं दिया है। दिया है लेकिन बहुत बहुत पहले दिया है। अनर्पित चरिम चिरात करुणो यावतीर्ण कलौ। ये कलयुग को लोगों को मैं ऐसी विशेष कृपा प्रदान करूंगा जो मैंने बहुत लंबे समय तक नहीं दिया था किसी को भी। तो ये वृंदावन के भक्ति को मैं बांटना चाहता हूं। तो कृष्ण इतने जल्दी क्यों आए? क्योंकि उन्होंने सोचा, अरे रे, मैंने आस्वादन तो स्वयं कर लिया मेरे वृंदावन के प्रिय भक्तों के साथ में, लेकिन दुनिया को क्या देकर गया मैं? बेलगाम के लोग तो रह गए, उनको नहीं मिला। अब मुझे चाहिए कि मैं फिर से प्रकट हो जाऊं और मैं उन सबको ये वृंदावन की भक्ति बांट दूं। और फिर मैं जब यहां धरातल में प्रकट हो जाऊंगा तो चारों रसों का आस्वादन मैं करूंगा। कौन से चार रस? संसार में भी हम देखते हैं कि लोगों के बीच में जो संबंध होते हैं वो इन्हीं चार प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं दास्य। हम किसी को अपना मालिक समझते हैं, उस व्यक्ति के हम अपने आप को कर्मचारी या नौकर या सेवक समझते हैं, उसके आगे है एक समानता का भाव जो मित्रों के बीच में होता है, बंधुओं के बीच में, दोस्तों के बीच में। तीसरा है एक माता पिता का जो प्रेम बच्चों के प्रति होता है, बच्चों का प्रेम जो माता पिता के साथ होता है, ये वात्सल्य स्नेह होता है। और फिर इस संसार में पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में प्रेम होता है, ये भी देखा जाता है। परंतु यहां का जो प्रेम है इन चारों भावों में, वो सच्चा प्रेम नहीं है, वो सच्चे प्रेम का एक विकृत रूप है। सच्चा प्रेम तो केवल भगवान के धाम में होता है। इन चारों ही रसों का, इन चारों ही संबंधों का वास्तविक और सर्वोच्च शुद्ध जो रूप है वो गोलोक वृंदावन में है, जहां की श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए उनके सेवक होते हैं, श्री कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र होते हैं जिनके साथ वो सख्य रस का आदान प्रदान करते हैं, अपनी माता यशोदा और पिता नंद बाबा के साथ में प्रेम का आस्वादन करते हैं, और फिर गोपियों के साथ में माधुर्य रस का या श्रृंगार रस का आस्वादन करते हैं। तो ये शुद्ध प्रेम है चारों रसों में। तो मैं अभी दुनिया के लोगों को दिखाना चाहता हूं, जो कि इस संसार के प्रेम को सच्चा मानकर जन्म मृत्यु के चक्र में भटक रहे हैं, मैं उनको दिखाऊंगा कि सच्चा प्रेम क्या होता है, कितना आनंद होता है, और ये मुझसे ही संबंधित होता है। तो मेरे वृंदावन की लीलाओं को मैंने प्रदर्शित तो किया, अब लोगों ने सुना इसके बारे में, बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने व्यास देव जी की कृपा से भागवत समझ लिया और राजा परीक्षित को कह दिया, अब श्रीमद् भागवत में मेरे वृंदावन की लीलाओं का वर्णन अवश्य है, परंतु केवल वर्णन है। अब जो कलयुग के लोग हैं, जो भागवत को पढ़ेंगे या सुनेंगे, वो सुन पाएंगे कि भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने इस तरह से लीलाएं की थीं। वैसे तो इस कलयुग में भगवान के लीलाओं को सुनने के लिए भी रुचि बहुत कम होती है। आज यहाँ कोई सिनेमा के अभिनेता आए होते हमारी जगह, या कोई क्रिकेट के खिलाड़ी आए होते, तो कितनी भीड़ होती यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे साधारण बेचारे साधु आए हैं, अभी गिने चुने श्रद्धालु लोग आएंगे, तो भगवान सोच रहे हैं कि यहाँ श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ को सुनने के लिए भी लोगों की रुचि नहीं है, लोगों को सिनेमा क्रीड़ा आदि में बहुत ज्यादा रुचि होगी। तो फिर जो कम लोग आएंगे, भागवत को सुनेंगे, मेरे वृंदावन की लीला के बारे में सुनेंगे, वो भी गलत समझेंगे, अधिकांश उनमें से लोग मेरी रास लीला तक जाएंगे, गलत समझेंगे, गलत टीका करेंगे, तो फिर ये कलयुग के लोगों को कैसे बताया जाए कि वो वृंदावन में प्रवेश कैसे करें, कि कैसे मेरे वृंदावन की लीला में वो शामिल हो जाएं, कैसे वो मुझ तक पहुंच पाए। मेरा जो वृंदावन का स्वरूप है, ऐसे प्रतीत होता है कि जन साधारण से बहुत दूर होगा, वो दूर से सोचेंगे सुनेंगे पढ़ेंगे, लेकिन उसको प्राप्त कैसे किया जाए, कोई रास्ता उनके लिए दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे ऐसा एक रूप धारण करना होगा जिसमें मैं स्वयं मेरे भक्त की भूमिका को निभाऊंगा, मेरे भक्त के रूप में प्रकट हो जाऊंगा मैं, और भक्त बनकर अपने ही आचरण से साधारण लोगों को मैं दिखाऊंगा कि वृंदावन का प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए, वो प्रेम क्या है। मैंने वृंदावन में 5000 या वृंदावन में दिखाया, परंतु अब मुझे दिखाना है अपने उदाहरण से कि उस वृंदावन को के प्रेम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और लोगों को यह आश्वासन देना है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उस वृंदावन की भक्ति को पा सकता है। तो ऐसे श्री कृष्ण बड़े चिंतित रहते हैं भौतिक जगत के लोगों के लिए, लोगों का कल्याण कैसे हो। ये भगवान की कृपा है, भले हमें अपने बारे में उतनी चिंता नहीं है जितना कि भगवान को हमारे बारे में है। और इस दुनिया में भी हम देखते हैं कि बच्चों को अपनी परवाह उतनी नहीं रहती जैसे माता पिता को होती है बच्चों की। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते रहते हैं कैसे इनको वृंदावन के भाव में लाया जाए। तो श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि वृंदावन का प्रेम क्या है। इसके पहले श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने केवल यहां तक बात छोड़ी थी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि समस्त अन्य धर्मों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण के भक्ति के पथ को स्वीकार करना चाहिए, शरणागति के रास्ते में चलना चाहिए। परंतु शरणागति ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है। भगवान ने जो शर्त रखा है कि पापों से मुक्त होने के लिए शरणागत होना चाहिए, फिर कृष्ण ने सोचा कि चलो अभी वृंदावन की लीलाओं के द्वारा शरणागति कैसे की जाती है वो सिखाएं, उदाहरण आखिर होने चाहिए लोगों को। तो वृंदावन के निवासियों का उदाहरण सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। ग्वाल बाल हो, नंद बाबा माता यशोदा हो, वृंदावन की गोपियां हो, उनके उदाहरणों को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि हम समझ में आता है कि ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति क्या है। फिर भी जिस शरणागति की बात श्रीमद् भागवत में भगवद गीता में बताई गई थी और जिसका उदाहरण वृंदावन के भक्तों के संदर्भ में श्रीमद् भागवत में दिखाई पड़ा, अब उसी शरणागति को साधारण समाज में, मनुष्य समाज में आके प्रस्तुत करना, ताकि एक साधारण व्यक्ति को भी हौसला प्राप्त हो कि मैं भी वृंदावन के भाव में भक्ति कर सकता हूं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उनकी लीलाएं चैतन्य चरितामृत नाम के ग्रंथ में हैं। अन्य ग्रंथों में भी है, जैसे कि चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल इत्यादि, परंतु श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत ये दो मुख्य ग्रंथ हैं जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन है। तो वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए 500 वर्ष पूर्व, वृंदावन में वो प्रकट हुए थे 5000 वर्ष पूर्व। तो वृंदावन के प्राकट्य के 4500 वर्षों बाद वही श्री कृष्ण जो कि करुणा के समुद्र हैं, वो प्रकट हुए नदिया में, नवद्वीप में, जो आज बंगाल में है। लेकिन ये नहीं समझिए अरे हमें बंगाली भगवान से क्या करना, नहीं, भगवान ना तो बंगाली है, ना वो किसी प्रांत के है, ना किसी देश के हैं, भगवान तो भगवान है। ये सारी सीमाएं जो है, ये सारे उपाधियां ये मनुष्यों के लिए होती हैं, परंतु भगवान के लिए तो ऐसे कोई उपाधियां नहीं होती हैं। तो खैर भगवान वहां प्रकट हुए इसी तिथि पर फाल्गुनी पूर्णिमा। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तो उन्होंने सोचा अब मुझे सारे जगत को वृंदावन के कृष्ण प्रेम में डुबो देना है। राहु, राहु का नाम तो आपने सुना होगा ना, राहु और केतु, जिनके द्वारा ग्रहण आदि होते हैं। तो राहु सोच रहे थे कि अब ये जब चांद, मायापुर चंद्र, गौर चंद्र अब जब प्रकट हो रहे हैं, तो तो अब इस चांद के पूर्णिमा ये की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं है। जब सच्चे पूर्णिमा के चांद प्रकट हुए हैं तो ये नकली चांद की क्या जरूरत है? तो चलो इनका ग्रहण कर देते हैं। तो राहु ने फिर ग्रहण कर दिया, चंद्र ग्रहण हुआ। और ऐसे एक प्रथा है कि जब भी ग्रहण होता है तो लोग जो श्रद्धालु होते हैं वो तरह तरह के धार्मिक कार्य करते हैं और विशेष रूप से नाम संकीर्तन करते हैं। तो नाम संकीर्तन करते करते उस समय भी लोग बड़े संख्या में नवद्वीप में गंगा के तट पे गए और ठीक उसी समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में प्रकट हुए। कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में और वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं कि केवल श्रद्धालु भक्त हरि हरि कह के बोल नहीं रहे थे, उनके अतिरिक्त जो अन्य हैं, जो यवन म्लेच्छ हैं, वो श्रद्धालु भक्तों की नकल करते थे। देखो ये हरि हरि बोल रहे हैं, हरि हरि। तो भगवान ने देखो कैसे युक्ति कर ली, चंद्र ग्रहण का आयोजन किया, श्रद्धालु लोग तो गा ही रहे थे हरि का नाम, साथ साथ जो उनका मजाक उड़ा रहे थे उनके मुख से भी हरि का नाम निकला। तो इतना पावन एक वातावरण निर्माण हो गया, सभी लोग वहां हरि हरि कह रहे थे। तो हरि की ध्वनि चारों दिशाओं में गूंज रही थी और ऐसे वातावरण में चैतन्य महाप्रभु का इसी दिवस पर आविर्भाव हुआ। उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र, उनकी माता का नाम था शची देवी। जब भी भगवान प्रकट होते हैं अकेले नहीं प्रकट होते हैं ना, उनके अनेक पार्षद हैं जो उनकी लीला में सहायता करने के लिए, शामिल होने के लिए प्रकट होते हैं और उनकी लीला में सदैव उनसे वरिष्ठ कोई होते हैं, उनके समकालीन कोई होते हैं और उनसे कनिष्ठ भी कोई होते हैं। तो इसलिए जब वो मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं तो उनके माता पिता तो कोई होने चाहिए जिनका जन्म उनके आविर्भाव के पहले हुआ होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने पहले उनके जो महाप्रभु के लीला में जो वरिष्ठ पार्षद होने हैं उनको पहले भेज दिया, जैसे कि जगन्नाथ मिश्र, सची देवी, आचार्य रत्न, चंद्रशेखर आचार्य, श्रीवास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर इत्यादि। तो ये सब पहले प्रकट हुए, परंतु भगवान के योग माया के अधीन रहने के कारण उनको पता नहीं चला कि आगे चल के कृष्ण हमारे इतने निकट होने वाले हैं और वो निमाय के रूप में जन्म लेने वाले हैं। तो खैर जब निमाय का प्राकट्य हुआ, ऐसे एक बहुत ही दिव्य भक्तिमय वातावरण सब जगह था। तो इस घटना से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारी दुनिया को दिखाया या संकेत किया कि उनका आंदोलन क्या होना है, हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन उनका होना है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ शमदौ तमोनदौ, कि मैं नमन करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद प्रभु को। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सह उदितौ, दोनों अभी अभी उदित हुए हैं, उनका उदय हुआ है, वो चांद रूप के हैं। पुष्पवंतौ, चांद सूरज और चांद के समान दोनों चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए हैं गौड़ उदये, गौड़ भूमि में। गौड़ भूमि अर्थात बंगाल की भूमि उस समय गौड़ देश कहलाती थी। और क्यों प्रकट हुए हैं? चित्रव शम्दव तमोनुदव। शम्दव तमोनुदव का मतलब है कि इस धरती के अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार को वो बहुत ही अद्भुत ढंग से नष्ट करने वाले थे, और ऐसे तेजस्वी स्वरूप में वो प्रकट हुए हैं दोनों, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों के कीर्तन के द्वारा संसार के समस्त लोगों को वृंदावन की भक्ति प्रदान करना, ये है उनका उद्देश्य। जब वराह देव प्रकट हुए थे तो उनका उद्देश्य एक अवतार में ये था कि पृथ्वी जो कि गर्भोदक सागर में गिर पड़ी है उनको उठा ले आना। जब मत्स्य अवतार आए थे तो उनका भी एक उद्देश्य था, मछली के रूप में जल में तैर रहे थे, साधुओं की रक्षा की उन्होंने। उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के अवतीर्ण होने का उद्देश्य है कि सारे जगत को हरिनाम संकीर्तन के द्वारा वृंदावन के प्रेम में डुबाया जाए। और ये है महाप्रभु का आंदोलन, हरि नाम संकीर्तन का आंदोलन। और जो व्यक्ति बुद्धिमान है श्रीमद् भागवत के अनुसार, वो भगवान कृष्ण के इस विशेष रूप की आराधना करेंगे। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायर यजंति ही सुमेधसः। जो सुमेध हैं, मेध अर्थात बुद्धि, सुमेध अर्थात जो बहुत बुद्धिमान है, तो कलो अर्थात इस कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण के उस रूप की आराधना करेंगे जो कि सदैव कृष्ण कृष्ण कह के प्रकट हुए हैं। कृष्ण वर्णम, ये दो वर्ण कृष्ण और ण, इनका उच्चारण सतत करते हैं। और क्या लक्षण बताए हैं ऐसे भगवान के इस रूप को, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, उनकी जो त्वचा है, जो कांति है, वो अकृष्ण होगी। कृष्ण जब वृंदावन में प्रकट हुए थे उनके मूल रूप में, तो उनका वर्ण या उनकी कांति भी कृष्ण ही थी, कृष्ण अर्थात जो सांवले होते हैं। कृष्ण शब्द का तात्पर्य बहुत गहरा है, आज उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इतना कहना पर्याप्त इस समय है कि वृंदावन के कृष्ण के शरीर की कांति सांवला का सांवली होती है, परंतु जब वो महाप्रभु के रूप में आते हैं तो अकृष्ण, तो उनका सांवला रंग नहीं है अर्थात स्वर्ण रंग है। और जब वो प्रकट होते हैं वो अकेले नहीं आते, स अंग उप अंग पार्षद उनके जितने भी भक्त हैं उनके साथ में वो प्रकट होते हैं। यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर, संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करने के लिए। संकीर्तन ये भी एक यज्ञ है। जब यज्ञ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को लगता है कि यज्ञ का मतलब है कोई अग्निहोत्र करना। ठीक है, वो भी यज्ञ होता है अवश्य, परंतु यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य है वो। यज्ञों वही विष्णु हो, तो अनेक कार्य हैं जिनसे भगवान कृष्ण को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो इन समस्त कार्यों में से सर्वोत्तम कार्य जिससे भगवान सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं वो है नाम संकीर्तन इस कलयुग में। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है यज्ञ ही संकीर्तन प्रायेर। वैसे प्रायेर शब्द का मतलब है कि अन्य भी कार्य हैं, जैसे हम भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, दर्शन करते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, तरह तरह की सेवाएं करते हैं, फिर भी इन समस्त सेवाओं में से प्रमुख जो सेवा है जिससे भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं वो है नाम संकीर्तन, सम्यक कीर्तन, संपूर्ण कीर्तन, वो कीर्तन जो कि भक्तों के संग में किया जाता है, वो कीर्तन जिसमें कि एक बोलने वाले या गाने वाले होते हैं और अनेक लोग सुनने वाले होते हैं जो आगे चलकर स्वयं भी बोलते हैं, वो कीर्तन जो संपूर्ण परम सत्य श्री कृष्ण के संदर्भ में हो, अन्यों के बारे में नहीं, काली कीर्तन नहीं, दुर्गा कीर्तन नहीं, सम्यक कीर्तन, केवल श्री कृष्ण का कीर्तन। इसलिए भागवत का निर्णय ये है कि कलयुग के बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वो चैतन्य महाप्रभु की उपासना करें, उनके आदेशों का पालन करें और वो नाम संकीर्तन उनके आदेश के अनुसार करें। तो चैतन्य महाप्रभु एक मनुष्य की तरह ही अपने आप को प्रकट कर रहे थे, और जैसे श्री कृष्ण बड़े शरारती थे वृंदावन में, यहां पर भी नवद्वीप में प्रकट होने के बाद बालक निमाई बहुत शरारती थे, नाम उनका निमाई रखा गया क्योंकि नीम पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ, उनका घर नीम पेड़ के पास में था, नीम एक बहुत शुभ पेड़ माना जाता है, घर के पास नीम पेड़ होना अच्छा होता है, और ऐसे भी बताया जाता है कि नीम पेड़ के होने से जो भूत होते हैं, पिशाची, डाकिनी आदि, वो दूर रहते हैं, कड़वे चीज कोई भी पसंद नहीं करता ना, तो भूत भी नहीं पसंद करते होंगे कड़वे चीज, तो खैर इसलिए उनको भूत डाकिनी आदियों आदि से के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए उनका नाम निमाय रखा गया, और निमाय रहे तो सभी लोग निमाय निमाय कहते थे, वैसे जन्म नाम जो है वो विश्वंभर रखा गया, विश्वंभर जो समस्त ब्रह्मांड का पालन करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, तो बुलाने के लिए सभी लोग उनको निमाय बुलाते थे, और बहुत ही शरारती थे, तरह तरह के लीलाएं करते थे। एक बार हुआ ये कि दो चोर आए और वो देख रहे थे कि इस बालक के शरीर पर बहुत सारे मूल्यवान आभूषण हैं, गहने हैं, तो इनको हम चोरी कर लेंगे, परंतु सबके सामने तो चोरी नहीं कर सकते, तो ऐसा करते हैं कि इस बच्चे को हम उठा के ले जाते हैं, एकांत स्थान में जाएंगे, फिर ये आभूषण चोरी कर लेंगे, फिर बच्चे को वापस रख देंगे या बच्चे को वहीं छोड़ के चले जाएंगे, कोई परवाह नहीं। तो फिर ये चुपके से आए, जब बालक निमाय वहां अकेले खेल रहे थे, बहुत छोटे थे, उस समय अपने नन्हे पैरों पे चल भी नहीं पा रहे थे, इतने छोटे थे, तो उस समय उनको उठा लिया इन दो चोरों ने और जल्दी से भाग गए, और भागते भागते भगवान की माया शक्ति का प्रभाव ऐसे हुआ कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कहां जा रहे हैं, यहां वहां घूमते घूमते एक सुरक्षित स्थान ढूंढते ढूंढते पता चला कि वो फिर से आ गए निमाय पंडित के, निमाय के घर में ही, जगन्नाथ मिश्र के घर में, जहां से कि उन्होंने बच्चे को उठाया था। अब जब उसी आंगन में फिर से आए तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या हो गया, कि हम तो यहां से बच्चे को उठा के ले गए थे, अभी यहीं पे वापस कैसे आ गए। और उस समय बालक निमाय की अनुपस्थिति के कारण घर में तो हंगामा मच गया था, अरे निमाय कहाँ है, निमाय कहाँ है, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे चिंतित अवस्था में, तो लोगों को इधर उधर भागते हुए देखकर ये लोग घबरा गए, बच्चे को वही रखा और भाग गए। ऐसे निमाय पंडित जैसे जैसे बड़े होते गए, अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन तो करने लगे, परंतु स्नेह के कारण माता पिता को पता नहीं चला, कई बार जगन्नाथ मिश्र अपने घर में नूपुरों की आवाज सुनते थे और उस समय बालक निमाय चल के आते थे तो निमाय के चरणों में तो कोई नूपुर नहीं था, वो बोलते नूपुरों की आवाज कहाँ से आ रही है। कभी कभी वो देखते थे कि चंदन आदि से लिप कोई चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु हमारे बालक के चरणों में तो कोई चंदन आदि नहीं है, तो ये चरण चिन्ह कहाँ से है, कौन से चरण चिन्ह है। कभी कभी सची माता निमाय के जन्म के समय उसके पहले भी उनको ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते थे कि बहुत ही तेजस्वी, बहुत प्रकाशमान, सुंदर जो है कोई व्यक्ति इधर उधर खड़े हैं, और जमीन पे नहीं खड़े हैं, थोड़े ऊपर आसमान में खड़े हैं, और वो सब हाथ जोड़ के प्रांजलि मुद्रा में खड़े हैं, करबद्ध रूप में खड़े हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और सची माता सोच रही थी कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, सपना ही होगा, अब मुझे नमस्कार करने के लिए सब इतने सारे तेजस्वी लोग कहां से आएंगे, तो ये मेरा भ्रम ही होगा। भ्रम नहीं था, ये तो स्वर्ग लोक के देवता आए थे निमाय का दर्शन करने के लिए, क्योंकि वो गर्भ में थी, गर्भ में थे उस समय, तो सची माता की प्रदीक्षिणा करके फिर वहां से वो निकल गए। ऐसे तरह तरह की लीलाएं होती थी। फिर आगे जब वो बड़े हुए और अपने मित्र होने लगे तो बच्चे जैसे शरारत करते हैं ये भी करने लगे, गंगा के तट में जाके पानी में छलांग मारते जोर से, ताकि वहां जो तट में बैठने वाले ब्राह्मण जो अपनी पूजा आदि करते थे उनकी सामग्री वगैरह सब भीग जाती जल में, और फिर वे सारे ब्राह्मण नाराज हो जाते, अरे क्या कर दिया, मेरे पूजा खराब कर दिया। तो इस तरह से फिर वो ब्राह्मण उनके पीछे भागते, कभी जगन्नाथ मिश्र को शिकायत करते कि देखो तुम्हारे निमाय कितना शरारती है, कभी कभी अपने जो मित्र होते थे उनको फंसा डालते थे, वो शरारत करते और भाग जाते और मित्र पकड़े जाते, जैसे साधारण बच्चे करते हैं। बच्चों के जो कार्य होते हैं वो भी बहुत मधुर होते हैं, तो जब भगवान स्वयं ऐसे कार्य करेंगे तो ये सब कितना और सुंदर होगा। और फिर जब उनकी पढ़ाई शुरू हो गई तो सबको पता चल गया कि ये इसकी बुद्धि साधारण नहीं है। बस चंद दिनों में, एक दिन में ही उन्होंने सारे वर्णमाला जो है कंठस्थ कर ली, एक बार देखा सारे वर्णमाला को, अ आ ई ख ग घ सब कुछ उनको पता चल गया, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ा। अब हमें तो याद नहीं होगा, परंतु हम जब बच्चे थे हमने पहली बार अ आ ई ई सीखा था, तो कितने बार लिखा हुआ होगा, हमने कितनी बार 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 बताना पड़ा होगा हमारे माता पिता को हमें, या स्कूल में जाने के बाद भी कितनी बार 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 सुनना पड़ा होगा। तो तब से सबको पता चला कि ये बच्चा साधारण नहीं है। हालांकि उस समय उनको ये नहीं पता चला था कि ये भगवान है, परंतु इसकी बुद्धि बहुत तेज है और सौंदर्य भी उतना ही तेज है, ये सब जानते थे। और जैसे आगे बढ़े, बहुत ही कम समय में ऐसा पकड़ हो गया उनको सारे पढ़ाई के विषयों के ऊपर कि उनकी आयु में भी जो बहुत बड़े लड़के थे उनको भी वो वाद में हरा डालते थे। और जैसे ही वो और थोड़ी बढ़ गई उनकी आयु, तो बड़े बड़े जो भट्टाचार्य, मिश्र, उपाध्याय आदि जो पंडित रहते थे नवद्वीप में, उनको भी वाद में हरा डालते थे। और ऐसी उनकी बुद्धि थी कि सभी लोगों का मन चकरा जाता था, विस्मित रह जाते थे। कभी कभी वो किसी को आंख बुलाते, जबरदस्ती पकड़ लेते, आओ मेरे साथ वाद करो, तर्क करो। तर्क करते थे तो कोई व्याकरण के विषय में करते थे, क्योंकि वो व्याकरण को पढ़ना भी शुरू कर रहे थे अभी। तो कहते कि देखो कोई एक बात कहो, तो कोई व्याकरण की या कुछ भी बात कह देते तो निमाय उस बात का खंडन करते और कहते कि चलो अभी उत्तर दो, तो वो बेचारा उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि निमाय ने इस तरह से खंडन किया था उनके वाक्य का कि सामने वाले को कुछ रहा नहीं। और फिर निमाय पंडित अपने ही वाक्य का खंडन पुनः कर देते, ताकि जो पहले उस व्यक्ति ने कहा है उस वाक्य को ही पुनः स्थापित कर देते, और वो व्यक्ति तो देखते रह जाता और फिर से उस बात का खंडन करते नए तरीके से। तो ऐसे करते करते मानो ऐसे लग रहा था कि वो खेल रहे हैं कुछ सबके साथ, बड़े बड़े भट्टाचार्यों के साथ वो खेल खेल रहे हैं, और वो तो कहीं के नहीं रह जाते थे। ये बालक जो है बड़ा अद्भुत है, इसकी बुद्धि कैसी है, इसका ज्ञान कितना विशाल है। तो एक बार केशव काश्मीरी नाम के बहुत बड़े पंडित आए, दिग्विजय पंडित, जिन्होंने सारे दिशाओं को जीत लिया था। जैसे आजकल क्रिकेट हॉकी फुटबॉल की स्पर्धाएं होती हैं, उस समय में वाद और तर्क की स्पर्धाएं हुआ करती थी। तो बड़े बड़े जो पंडित थे जिनको व्याकरण अलंकार मीमांसा न्याय ऐसे जब विषयों पे प्रवीणता थी निपुणता थी, तो ये सब जगह जाते थे विद्या के स्थानों में और वहां के विद्वानों को चुनौती देते थे, आओ मेरे साथ वाद करो, और फिर जो जीत जाएगा फिर वो दिग्विजयी बन जाएगा। तो वहां ऐसे हुआ करता था कि जो हार जाता था फिर वो मानता था, और सामने वाले के सामने हार मान के वो कभी हस्ताक्षर भी कर देता था, या कभी कभी सामने वाले को गुरु भी मान लेता था। ऐसे कई बार हुआ, चैतन्य महाप्रभु के साथ में हुआ, मध्वाचार्य रामानुजाचार्य जब वो भ्रमण किया करते थे प्रचार के लिए, कई ऐसे बड़े बड़े विद्वान मिलते थे उनको जो या तो मायावादी थे या किसी अन्य दर्शन के अनुयायी थे, और उनके सामने कोई भी लोग आ नहीं सकते थे, इतने बड़े विद्वान माने जाते थे। फिर भी रामानुजाचार्य मध्वाचार्य उनसे वाद करते और उनको हरा डालते, और जब वो हार जाते तो वो उनके शिष्य बन जाते। ऐसे कईयों का परिवर्तन मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य ने कर दिया। तो लोगों में उतनी ईमानदारी हुआ करती थी, उतनी एक नीति हुआ करती थी कि वाद के समय किसी से मैं हार गया तो फिर उसे मेरा प्रभु स्वीकार करना चाहिए। परंतु आजकल ऐसे भी नहीं हो, तर्क करने में लोग आप पीछे नहीं रहते, आगे की सबसे आगे लोग रहते हैं तर्क करने के लिए, वाद करने के लिए। हमारा भी अनुभव है, जहां भी हम जाते हैं तर्क करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। आप किसी को जानते भी नहीं होंगे फिर भी आपके पास आएंगे, तिलक देख के कुछ न कोई बात उठाएंगे। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो कोई ना कोई अवश्य मिलता है आके, बिना कोई कारण के कोई तर्क करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा है कि बात सही निकली तो मैं मानूंगा स्वीकार करूंगा फिर मैं भी इनकी तरह भक्त बनूंगा, ऐसे विचार से नहीं आते, केवल तर्क करना है बस। तो तर्क या वाद उस तरह से होना चाहिए, यदि तर्क हो वाद हो सामने वाले को कोई उत्तर न हो तो स्वीकार करना चाहिए, और सामने वाले को फिर प्रणाम करके उसका शिष्य बन जाना चाहिए, ऐसे प्रथा है वाद में। तो महाप्रभु के समय में ये केशव काश्मीरी थे, तो इतने जबरदस्त पंडित सब जगह घूमते थे, सब जगह उन्होंने सबके बड़े बड़े पंडितों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए थे। और नवद्वीप के पंडितों ने जब सुना कि केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित यहाँ पर आ रहे हैं, तो सब अलग अलग जगह कोई बहाना बना के नवद्वीप से भाग गए। कोई कहने लगे मेरे रिश्तेदार की शादी है, कोई कहने लगा मैंने पहले से कोई कार्यक्रम बनाया था उस जगह में मुझे जाना है, ऐसे सभी लोग इधर उधर चले गए, क्योंकि कोई अपमानित होना नहीं चाहते थे केशव काश्मीरी के सामने। लेकिन निमाय पंडित रहे और केशव काश्मीरी आए, तो कोई बड़े पंडित थे ही नहीं उनका सामना करने के लिए, तो सोच रहे थे, लोगों से बात किया, फिर उन्होंने सोचा कि एक लड़का रह गया है ये निमाई पंडित, बाकी बड़े बड़े पंडित तो मेरे सामना नहीं कर सकते हैं, परंतु लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं इस लड़के की, तो चलो हम जाके आए ही हैं, तो इनको भी जरा परास्त करके निकल जाते हैं, ताकि आगे चल के ये लड़का बड़ा पंडित होगा, उसके पहले ही इसके हस्ताक्षर ले लेते हैं। तो जब एक बार केशव कश्मीरी निमाई पंडित को ढूंढते आ रहे थे, तो गंगा के तट पे उन्होंने देखा कि निमाई, जो कि एक लड़के थे केवल, अपने छात्रों के साथ बैठ रहे थे, वीरासन में बैठे हुए थे, चांद की रोशनी आ रही थी और यहाँ गंगा का तट बहुत ही सुंदर एक दृश्य था। दिखने में भी निमाय बहुत सुंदर थे, आखिर भगवान है ना, सर्व आकर्षक। तो ये सारा दृश्य इतना मनमोहक था कि केशव काश्मीरी केवल वहां खड़े हो गए और निमाय पंडित ने उनको देखा और पूछा कि, केशव काश्मीरी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो मैं निमाय पंडित हूं। अच्छा, तो तुम निमाय पंडित हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम इतने बड़े पंडित हो। तो निमाय ने कहा, फिर समझ गए, उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित हूं। तो निमाय पंडित ने हाथ जोड़ के कहा, अरे अच्छा, आप दिग्विजय पंडित हैं, तो मैं तो कोई बड़ा पंडित नहीं, आपके सामने तो मैं छोटा बच्चा हूं, मेरी विद्वत्ता क्या चीज है, कुछ भी नहीं है आपके सामने। अच्छा, आप इतने बड़े विद्वान हैं, तो ऐसा कीजिए, हम माँ गंगा माँ के तट में बैठे हैं, उनके आश्रम में बैठे हैं, माता गंगा का गुणगान आप कीजिए। तो खड़े खड़े उसी समय तत्क्षण केशव कश्मीरी ने एक के बाद एक श्लोकों की रचना करना शुरू कर दिया, गंगा का गुणगान करने लगे, वो उसी क्षण रचना शुरू कर ली और करते करते एक के बाद एक श्लोक बोलते गए। उनकी रचना मन ही मन में कर रहे थे, नए श्लोक थे, ऐसे नहीं कि पुरानी रचना को कंठस्थ किया था और वो अभी बोले जा रहे थे, खड़े खड़े तत्क्षण रचना करते करते जा रहे थे और पूरे एक घंटे तक बोलते रहे श्लोक, गंगा का गुणगान करते रहे। सारे जो छात्र थे निमाय पंडित के, उनका मुंह खुलता गया, ऐसे खुले मुंह से देखते रह गए, ये क्या है, कभी ऐसी विद्वत्ता जो अभी देखी नहीं है, ये तो चमत्कार है, इतना विद्वान ये व्यक्ति, इतनी बुद्धि, खड़े खड़े ऐसे इतने सारे श्लोक और एक से एक बढ़कर श्लोक, ऐसे अलंकार उसमें, ऐसे उपमाएं, ऐसी भाषा। निमाय पंडित केवल सुन रहे थे शांति से। तो फिर निमाय पंडित ने फिर रुके केशव कश्मीरी एक घंटे बोलने के बाद लगातार निमाय पंडित की ओर देखा, फिर निमाय ने कहा, वाकई आपको माता सरस्वती की कृपा प्राप्त हुई है, आप जैसे पंडित दुनिया में कहीं नहीं दिखाई पड़ते, खड़े खड़े आपने इतने सारे श्लोकों के ये रचना आपने की, इतने उत्कृष्ट तरह से आपने माता गंगा का गुणगान किया, तो मैं समझना चाहता हूं एक श्लोक जो जिसकी रचना आपने की, तो कौन से श्लोक की रचना सुनना चाहते हो? तो उन अनेक श्लोकों में से एक श्लोक निमाय पंडित ने चुना और उसको दोहराया। निमाय पंडित ने जैसे उन्होंने रचना की थी वैसे ही दोहराया कि इस श्लोक को मुझे आप समझाइए। तो केशव काश्मीरी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, तूफान की तरह मैं इन श्लोकों को बोले जा रहा था, तुमने एक भी श्लोक कंठस्थ किया कैसे, और ये भी बीच वाला श्लोक। तो निमाय पंडित ने कहा कि देखिए, जैसे किसी को माता सरस्वती की कृपा मिलती है कि वो सुंदर से सुंदर श्लोक खड़े खड़े रचित कर सकता है, वैसे किसी दूसरे को माता सरस्वती की कृपा होती है कि वो श्रुति धर बन जाए। श्रुति धर अर्थात जो एक बार सुनने पर याद रख ले। तो अब थोड़े सावधान हो गए केशव कश्मीरी कि अरे ये क्या बाप, ये लड़का है, इसकी स्मृति शक्ति इतनी तेज है। हाँ तो ठीक है, क्या उसका मतलब उन्होंने बताया तो निमायन पंडित ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं आपके अंदर, पांच में अच्छे गुण सुनाना चाहता हूं और पांच दोष भी सुनाना चाहता हूं। दोष मेरे रचना में कैसे हो सकता है, एक भी दोष नहीं हो सकता है। तो निमाय पंडित ने कहा पहले मैं आपको इसके जो अच्छे गुण हैं वो सुनाना चाहता हूं। तो उन्होंने पांच अच्छे गुण उनको सुनाए और फिर कहने लगे अब मैं दोष सुनाऊं। तो जैसे उन्होंने अच्छे गुणों का वर्णन किया तब भी धीरे धीरे से केशव कश्मीरी का हौसला कम होते जा रहा था। ये क्या हो रहा है, इसने ऐसे अच्छे अच्छे विश्लेषण कैसे किया। फिर अब दोषों की बात जब आई तो केशव कश्मीरी अब थोड़े से चिंतित होने लगे थे। फिर वो कहने लगे फिर एक के बाद एक निमाई उनके उस एक श्लोक के दोषों को बताने लगे। एक दोष उन्होंने इस तरह से कहा कि आपने इस श्लोक में शिवजी का संबोधन करते हुए भवानी भर्त हो शब्दों का प्रयोग किया है। आपने कहा कि शिवजी का नाम है भवानी भर्त हो, भर्त हो अर्थात स्वामी या पति, और भवानी यह दुर्गा का नाम है। तो दुर्गा के स्वामी या पति शिव जी आपके कहने का उद्देश्य ऐसे था, परंतु भवानी शब्द का अर्थ क्या है कि जो भव की पत्नी है, क्योंकि शिव जी का नाम भव है, तो भव की पत्नी है भवानी, तो भव के पत्नी के पति। भवानी भर्तु का मतलब है भव के पत्नी के पति। तो क्या दुर्गा देवी के शिवजी के अलावा और भी कोई पति है क्या, क्योंकि आप कहते हो शिवजी की पत्नी की पति, तो क्या दो पति हैं? तो इसका मतलब ये दोष है। तो भवानी भर्तु नहीं कहना चाहिए, केवल भव ये शिवजी का नाम है। तो ऐसे एक के बाद एक निमाई बोलते गए और बेचारे केशव कश्मीरी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, उनका बुद्धि काम ही नहीं कर रहा था, मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो बुद्धि में। और वो सोच रहे थे, माता सरस्वती सोच रहे थे कुछ शब्द दीजिए मुझे मुंह में कुछ बोलने के लिए, एक भी शब्द नहीं निकल रहा था और बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि कैसे जवाब दें इसके इस लड़के को। वो बस वैसे के वैसे निरुत्तर खड़े हो गए वहां पर। और निमाय पंडित को करुणा हुई, सोचने लगे नहीं नहीं ये इतने बड़े पंडित हैं, ऐसे इनका अपमान नहीं करना चाहिए। निमाय पंडित हालांकि इतने बड़े विद्वान थे परंतु जब भी किसी को परास्त करते थे वाद में तो अपमानित नहीं करते थे, इस तरह से परास्त करते थे कि सामने वाला व्यक्ति भी हारने में खुशी को महसूस करता था और उसके मन में निमाय के प्रति एक प्रेम सा स्नेह सा उत्पन्न हो जाता था। तो अब इतने बड़े दिग्विजयी पंडित, इनका अहंकार तो हिमालय पर्वत के समान इतना विशाल था। अब निमाय पंडित जानते थे कि सबके सामने इनके अहंकार का चूर करना ये ठीक नहीं है, ये सहन नहीं कर पाएंगे, मर ही जाएंगे ये, तो इसलिए क्या करना चाहिए, अभी मैंने जो कहा है उनको बहुत बुरा लगा है, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो थोड़ी सांत्वना भी देते हैं उनको। फिर कहने लगे देखिए वैसे तो आपके हर एक श्लोक में बहुत सारे दोष हैं, फिर भी आपको बुरा मत मानिए, क्योंकि क्या है आपकी भावना कितनी अच्छी है, आप माता गंगा का गुणगान कर रहे हैं, देखिए बड़े बड़े कवि हुए हैं संस्कृत के, जैसे भवभूति हैं, कालिदास हैं, इनकी रचनाओं में भी कई व्याकरण और अलंकार की दृष्टि से देखा जाए, न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो कई त्रुटियां पाई जाती हैं, परंतु हम उनकी निंदा नहीं करते। चांद पूर्णिमा के तिथि पर चांद का सौंदर्य अद्भुत होता है, सभी लोग प्रशंसा करते हैं। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति चांद की निंदा नहीं करता कि चांद के ऊपर कोई काले धब्बे हैं। पूर्णिमा का सौंदर्य इतना अच्छा होता है कि हम छोटे छोटे काले धब्बों को हम देखते नहीं हैं। ठीक उसी तरह से बड़े बड़े जो कवि होते हैं उनकी रचनाओं में कभी कभी कोई दोष निकला तो उसको हम देखते नहीं है। इसी तरह से आपकी रचनाओं को जब हम सुनते हैं हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसे बड़े विद्वान हैं आप, तो थोड़े बहुत दोष हो भी जाए तो क्या है इसमें, जबकि कालिदास भी ने के रचनाओं में भी भूल है। तो ऐसे महाप्रभु ने थोड़ा मलम भी लगाया उनके हृदय के ऊपर, क्योंकि चोट तो बहुत गहरी पहुंची थी। देखिए जितना ज्यादा हमारा अहंकार हो, जब अहंकार भंग होता है उतना ही ज्यादा दुख और कष्ट होता है, और वो तो होना ही होना है। ये अहंकार हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, वो हमें हमारे ही स्वयं अहित के लिए कार्य करने के लिए बाध्य करता है। मेरा भी नुकसान क्यों ना हो जाए परंतु मैं इस बात को नहीं मानूंगा, क्यों? अहंकार उस बात को स्वीकार करने नहीं दे रहा है। और ऐसे बड़े अहंकार को तो जैसे गुब्बारे की तरह फूलते गए, सब हस्ताक्षर करते गए दिग्विजयी पंडित करके। इसलिए अपनी प्रशंसा दूसरों से सुनना अच्छा नहीं है हमारे लिए। हाँ, अपने आप भी नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरों से सुनने से क्या होता है, हमारा अहंकार बढ़ जाता है। और गुब्बारे की तरह जितने लोग ज्यादा प्रशंसा करते हैं वो गुब्बारे की तरह फूलता रहता है। फिर एक बार कोई हमारा सच्चा मित्र आता है, एक कोई सुई लेकर उसमें ठोक देता है और फिर बहुत बुरा लगता है हमें। इसलिए अहंकार यदि न हो तो ठोकने के लिए कुछ है ही नहीं, हम सुखी रहेंगे। तो खैर निमाय पंडित चाहते थे कृपा करना है इनके ऊपर, तो बड़े मलम लगाए, अपने मीठे वचनों के मलम लगाए, और केशव काश्मीरी जैसे के जैसे बिल्कुल उनका सर चकरा रहा था और सर नीचे करके वो चले गए अपने घर में, अपने बिस्तर में बैठे, और कुछ उनको पता नहीं चल रहा था, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और माता सरस्वती को प्रणाम करने लगे, हे माता सरस्वती आपने क्या किया मेरे साथ और क्यों किया, एक साधारण लड़के के सामने मुझे आपने मेरा अपमान ऐसे करा दिया। आज तक बड़े बड़े पंडित जो हैं वो मेरे सामने कांपते थे आने के लिए, वो कहीं भी नहीं रह जाते थे, और आज मेरी हार ऐसे हुई सबके सामने, एक छोटे से लड़के के सामने, तो मेरा अपमान आपने ऐसे क्यों किया, क्या मैंने आपके प्रति अपराध किया होगा ऐसे। तो ऐसे दुखी अवस्था में वो लेटे रहे, नींद नहीं आ रही थी, फिर धीरे धीरे नींद आ तो गई। चंद क्षणों तक नींद आई, उस समय माता सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, वो केशव काश्मीरी के स्वप्न में आई और कहने लगी, हे वत्स दुखी न होना, आज तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अहोभाग्य हुआ है, तुम आज बहुत सौभाग्यशाली हुए हो, क्योंकि स्वयं मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण आज इस रूप में आके तुम्हारे ऊपर कृपा उन्होंने की। तो सपने में ही जब सुन रहे थे उनको आश्चर्य, वो भगवान है, हाँ, इसलिए जाओ बुरा नहीं मानना, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है, और कल सुबह जब उठोगे तो जाके उनके चरणों में क्षमा याचना करना। तो केशव काश्मीरी जाग गए और सुबह होते ही स्नान आदि करके सीधे निमाई के पास चले गए, एकांत स्थान में निमाई को मिले और पूरा प्रणाम करके क्षमा याचना की, कृपा याचना भी की। और निमाई ने कहा कि ठीक है, माता सरस्वती ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, तो किसी से कहना नहीं, किसी को बताना नहीं कि माता सरस्वती ने तुम्हें क्या कहा है। मेरा जो परिचय है वो किसी को बताना नहीं। तो केशव काश्मीरी बड़े आनंद से वहां से चुपचाप चले गए और फिर वो गए ब्रजभूमि वृंदावन, वहां राधा कुंड में बसे। आज भी केशव काश्मीरी एक मठ है उनका, राधा कुंड के पास में ही है। वो भी एक आचार्य बने। इस तरह निमाय पंडित इतने बड़े पंडित थे, आखिर वो हैं भगवान, इसलिए जो निमाय पंडित कहते हैं फिर उस बात को हमें मानना चाहिए। हम तो केशव काश्मीर की तरह बड़े पंडित तो नहीं है ना, फिर भी केशव काश्मीरी मान लिया तो हमें क्यों नहीं मानना चाहिए। तो वही निमाय पंडित आगे चल के जब भक्ति के लक्षण प्रकट करने लगे, फिर आगे चल के उन्होंने संन्यास लिया, चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने गए, तो उन्होंने क्या उपदेश दिया हम सबको, अपना परिचय उन्होंने कैसे दिया। नाहम विप्रो नच नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहम वर्णी नच गृहपति न वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भक्तु पद कमलयोर दास दासानु दासः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं न तो ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, मैं न ब्रह्मचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वानप्रस्थ हूं, न सन्यासी हूं, मैं आठों में से एक भी नहीं हूं, तो मैं क्या हूं। गोपी भर्तु हो, गोपियों के जो स्वामी हैं श्री कृष्ण, पद कमलयोर उनके दासों के, उनके चरण कमलों के दासेर दास, मैं दासों के दासों का दास हूं। वो श्री कृष्ण जो वैसे पूर्णामृताब्धेर पूर्ण अमृत के समुद्र हैं, जो अपने तेजस्वी स्वरूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण के चरण कमलों के दासों का मैं दास हूं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं हम सबको, और इसलिए खुद कृष्ण दास बन के आए हैं। वो कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे हैं, नाम संकीर्तन। तो हम सबको भी चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। कोई तपस्या नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहना है, भक्तों के संग में श्रीमद् भागवतम भगवद गीता को सुनना है, भगवान के सुंदर विग्रह का दर्शन करना है, सेवा करना है, प्रसाद पाना है, बस ये महाप्रभु का आंदोलन है। और महाप्रभु ने भविष्यवाणी की, पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बिमोर नाम, कि पृथ्वी में जितने भी सारे गांव शहर आदि हैं उन सब में मेरे नाम की ध्वनि गूंजती रहेगी। और वास्तव में हुआ है ऐसे। श्रील प्रभुपाद जी ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ को की स्थापना की, और आज इस संस्था के स्थापना के केवल 50 साल भी अभी पूरे हुए नहीं हैं, 2016 में 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो इस 50 वर्ष की अवधि में कौन सा देश है जिसमें ये हरे कृष्ण महामंत्र बोला नहीं जा रहा है, कौन सा देश है जिसमें भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का वितरण नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसे कई देश हैं जिनमें कि अन्य धर्मों को अनुमति नहीं देते हैं, ऐसे देशों में भी कृष्ण भक्त छुप छुप के महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। यहां हमारे लिए कितनी छूट है, जरूरत से ज्यादा छूट है, इसलिए हम भक्ति इतनी अच्छी तरह से स्वीकार नहीं करते हैं, इसको सस्ता लेते हैं। परंतु महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिन लोगों का जन्म भारत भूमि में हुआ है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कृष्ण भक्त बन के, शुद्ध कृष्ण भक्त बन के अपना जीवन सार्थक करें और साथ साथ अन्यों का भी जीवन सार्थक करें। तो हमें कृष्ण भक्त बनना चाहिए और इस प्रचार के आंदोलन में, नाम संकीर्तन के आंदोलन में शामिल होना चाहिए, कृष्ण भक्ति के संदेश को जगह जगह फैलाने में मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। फिर हमारा जीवन धन्य होगा, अन्यों का जीवन भी धन्य होगा। तो श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर, गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हम अपने साथ घर ले जा सकते हैं। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, इतने शांति से, ध्यान से आप सबने ये प्रवचन सुना, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से आप यहाँ बारंबार मंदिर में आया करेंगे, दर्शन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग में शामिल होंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की। राधा गोकुलानंद मंदिर में 2015 की गौर पूर्णिमा उत्सव पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं और उत्साह बढ़ाया, इसके लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ गौर पूर्णिमा के 3 दिन जो गौर कथा हुई, इसके लिए हम हृदय पूर्वक धन्यवाद देते हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज को। तो भक्तों से अनुरोध है 3 बार उच्च स्वर में हरि बोल कहकर महाराज जी को धन्यवाद देंगे।